हमारे मुअज्जज मेहमान डॉक्टर उवैस सिद्दीक तशरीफ ला चुके हैं। गुर्दे में पथरी क्यों होती है, इसकी वजह क्या है, इसका इलाज क्या है, तफसीली गुफ्तगू करेंगे इस मौजू पर। आप अजीज नाज़रीन प्रोग्राम के पहले हिस्से में सवाल भेजना शुरू कर दीजिए। चलते हैं डॉक्टर साहब की खिदमत में। डॉक्टर साहब सलाम अर्ज करती हूँ, प्रोग्राम में खुश आमदीद कहती हूँ।
शुक्रिया।
कैसे हैं डॉक्टर साहब? ठीक ठाक
अल्हम्दुलिल्लाह।
और सर्दियाँ कैसे गुजर रही हैं?
सर्दियाँ गुजर रही
हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आप जो है एक बहुत अहम मौजू के साथ यहाँ तशरीफ लाए, और अक्सर हम देखते हैं लोगों को गुर्दे में पथरी की शिकायत रहती है। सबसे पहला सवाल, ये क्या चीज़ है और उसकी वजह क्या होती है कि इंसान के गुर्दों में पथरी बनना शुरू हो जाए?
इससे पहले कि आपके सवाल का जवाब दूं, मैं थोड़ी बहुत आपको कुछ इसके जो फैक्ट्स है वो बताता
चलूं। जबरदस्त।
और जो पथरी है आजकल दुनिया में सबसे ज़्यादा, मतलब 10% पॉपुलेशन पूरी वर्ल्ड की जो है वो इफ़ेक्ट हो रही है। पहले कम होते थे, लेकिन अभी आजकल जब से 2000 से लेके ज़्यादातर ये लोगों में पाया जाता है।
अच्छा।
क्योंकि डाइट चेंजिंग की वजह से इसमें बहुत सारा इफ़ेक्ट रहता है डाइट का, जिसकी वजह से पथरी बनने में एक मतलब उसको मदद मिलती है,
तेज़ी
आती है।
बिल्कुल।
ज़्यादातर ये गोरों में दिखती है, और जो जैसे हम अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स की बात करें, साउथ अफ्रीका है या नाइजीरिया है, इथियोपिया है, कि उसकी जो वो मतलब उनकी जो पोस्ट, अगर उनकी स्किन की बात करें वो थोड़ा तीर रंग का होता है, ब्लैक कलर का होता है, तो उनमें बहुत ही रेयर केसेस में पथरी
यानी गहरे रंग वाले अफरादों में ये शिकायत कम पाई जाती है।
जी बिल्कुल।
जबरदस्त।
और मर्दों में बनस्बत औरतों में ज़्यादातर पाई जाती है, और इसके की औरतों में जो वो एक कुदरती वो माहवारा होता है, तो उसके जब वो मतलब बंद हो जाता है, तो उसके बाद बनने की उनमें भी रिस्क इक्वल होती है जितने मर्दों में पहले होती थी।
अच्छा
जी, तो अब आपने जो सवाल किया था कि किन किन तरीकों से बन जाती है ये पथरी, इसमें डाइट का जैसे मैंने कहा, सबसे पहले एक नज़र डालते हैं हमारी बॉडी के ऊपर।
बिल्कुल।
हमारी बॉडी का एक पीएच होता है, जिसको रेगुलेट करने के लिए बॉडी, मतलब उस पीएच जो नॉर्मल पीएच होता है 7.2 होता है, और उस पीएच में बॉडी के जितने भी फंक्शंस होते हैं वो अच्छे तरीके से और नॉर्मल तरीके से अंजाम पाते हैं।
ठीक है।
अगर पीएच ज़्यादा या कम हो जाए, ज़्यादा बोलने को एसिडिक बोलते हैं और कम करने को अल्कलाइन बोलते हैं, अगर अल्कलाइन हो जाए या एसिडिक भी हो जाए पीएच, उन दोनों में भी स्टोन्स बनने का बहुत खतरा रहता है, और न कि स्टोन्स दूसरे सारे मेटाबॉलिज्म जैसे कि हमारे लिवर है या दूसरे किस्म के पेनक्रियाज है, बाइलियर सिस्टम है, चूँकि वहाँ पे लिवर सबसे ज़्यादा जो है वो सबसे मेटाबॉलिज्म करता है, वो अगर उस पर पीएच का असर पड़ जाए तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो हैं, जो का मतलब तरीका है काम करने का बॉडी का, वो उस पर असरअंदाज होता है, और दूसरे फिर वो अपने नॉर्मल तरीके से काम नहीं कर पाता है। सबसे बड़ी डाइटरी, और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊँ कि डाइट के बिना पर और मतलब किन किन वजूहात से पथरी बनती है, उन्हीं के बिना पर इनको किस्मों में, बहुत सारे किस्मों में
डिवाइड
किया गया है। तो जैसे हम देखते हैं कि इसमें सबसे पहले जो है वो कैल्शियम स्टोन सबसे ज़्यादा
पाई जाती है
मर्दों में। सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली जो पथरी है वो कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स है। इस कैल्शियम स्टोन्स को दो तरीके में, मतलब वे कैल्शियम ऑक्सलेट पे और एक कैल्शियम फॉस्फेट पे बनती है। कैल्शियम ऑक्सलेट जो है वो पीएच पे डिपेंड नहीं करती है, और जो कैल्शियम फॉस्फेट है, अगर अल्कलाइन पीएच हो गया हो बॉडी का, तो उस अल्कलाइन पीएच की वजह से वो कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन बनने में एक उसमें तेज़ी आती है। तो इसका ये एक पीछे इसकी एक वो मैकेनिज्म है कि हमारी बॉडी के अंदर जब जो भी हम, अगर हम निगाह करेंगे, अगर हम नज़र डालेंगे हमारे गुर्दे से लेकर पेशाब के, मतलब जो वो बर्तन होता है जिसको हम बोलते हैं ब्लैडर, या जिसको हम मसाने भी बोलते हैं, जिसमें फिर पेशाब जमा होता है, फिर वो पेशाब की नाली से बाहर आता है, तो इसमें हर कोई जो यूरिनरी ट्रैक्ट जो मैंने बताया आपका जो ये पाथवे है, कहीं पे भी इसमें स्टोन बन सकती है, और ज़्यादातर किडनी के अंदर बनती है या फिर पेशाब की नाली में होती है। कैल्शियम स्टोन कैसे बनती है, जबकि हमारे जिस्म के अंदर जब पानी मतलब गुर्दों तक पहुंच जाता है, तो पानी के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है जो किडनी को मतलब जज्ब करनी पड़ती हैं, या किडनी को फिर उनको एक्सक्रीट करना पड़ता है, मतलब वो फारिग होनी चाहिए किडनी से बाहर, जो फिर पेशाब की सूरत में बाहर निकलते हैं।
यानी फिल्टरेट करती है।
जी बिल्कुल, फिल्ट्रेशन हो जाती है वहाँ पर। لیکن کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی قسم کی مطلب کوئی کمی ہو ہماری باڈی کے اندر, منرلز کی کمی ہو یا دوسری چیزوں کی جو وائٹامنس کی کمی ہو یا وائٹامنس کی بھی زیادتی ہو یا منرلز کی بھی زیادتی ہو, جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جب ہماری گردوں کے اندر پانی جاتا ہے, جو بھی ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں, جو اس کی وجہ سے جو پانی بنتا ہے جو پھر وہ پیشاب کی صورت میں باہر آتا ہے, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ یا تو سپر سیچوریشن اس کو بولتے ہیں ہم. سپر سیچوریشن کا مطلب یہ کہ جو گردے کو جذب کرنے کی طاقت تھی اب وہ اس سے زیادہ طاقت نہیں کر پا رہا ہے, اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ جتنے بھی مطلب منرلز یا وائٹامنز ہوتے ہیں یا دوسرے قسم کے اشیاء ہوتے ہیں جو پانی میں ہوتے ہیں وہ اسی میں جم جاتے ہیں, نہ وہ ایکسکریٹ ہوتے ہیں, نہ وہ باہر آتے ہیں پیشاب کے ساتھ, نہ وہ جذب ہوتے ہیں دوبارہ سے اندر تاکہ وہ بلڈ میں سرکولیٹ کریں اور پھر سے وہ لیکن وہیں پہ ہوتے ہیں اور پھر وہ سپر سیچوریٹ, اس کا سپر سیچوریٹ کا مطلب یہ کہ اس کو کرسٹلائز ہو جاتے ہیں وہاں پہ. کرسٹلائز جب وہ ہو جاتے ہیں تو وہ باہر نہیں بن پاتے ہیں, اور وہ باہر نہیں جا پاتا ہے تو اس کو پھر سٹونز بنتے ہیں, انہیں کو ہم کہتے ہیں سٹونز, جو یہ ساری چیزیں جو کرسٹلائز ہو جاتے ہیں انہیں کو سٹونز بولتے ہیں.
جمنا شروع ہو جاتی ہیں وہاں پر, ان کی تعداد زیادہ ہو تو وہ کہتے ہیں نا کہ ان کو پریسنگ پریشر کی صورت میں وہ سٹون بن جاتی ہیں. اچھا یہ پوچھنا چاہوں گی, آپ نے اشارہ کیا کہ مختلف اقسام ہے, کیلشیم سٹون کی طرف آپ نے اشارہ کیا, بہت سے لوگوں کے ذہن میں ایک یہ بات ہے کہ ہاں ہم جو ہے دودھ اور دہی اور ان چیزوں کا زیادہ استعمال کرتے ہیں تب بھی کیلشیم سٹونز بنتے ہیں, آیا اس سے کوئی لینا دینا ہے ان کا یا نہیں؟
جی بالکل, یہ بھی ایک صحیح بات ہے کیونکہ دودھ حاوی ہوتا ہے کیلشیم سے, لیکن جیسے میں نے کہا کہ ایک میکانزم ہوتا ہے اس کے جذب کرنے میں, اس کے ایکسکریٹ ہونے میں, یا تو کیلشیم اکثر سوڈیم کے ساتھ جو ہے اکثر یہ گردوں میں کام کرتا ہے, سوڈیم کے ساتھ اکثر بعض مطلب جذب ہو جاتا ہے یا ایکسکریٹ ہو جائے گا, چینلز ہوتے ہیں, مائکروسکوپک چینلز ہوتے ہیں جہاں سے کیلشیم مطلب گردوں میں جو ہے وہ جاتا آتا رہتا ہے, اس کی وجہ سے وہ ایکسکریٹ بھی ہوتا ہے پھر وہ ایبزارب بھی ہوتا ہے دوبارہ سے. تو اگر کیلشیم زیادہ ہو اور اس کے ایکسکریشن میں پرابلم ہے, مطلب کھانے پینے میں پرابلم نہیں ہے لیکن آپ کے گردے کے اندر جو وہ سسٹم بنا ہوا ہے, جو وہ میکینزم بنا ہوا ہے تاکہ وہ ایکسکریٹ ہو جائے یا ریابزارب ہو جائے, اس میں پرابلم آ رہی ہے, تو اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ان چیزوں سے کیلشیم کی جو ہے وہ لیول بڑھ جائے اور وہ مطلب پیشاب کی صورت میں باہر نہیں آ رہا ہے, پیشاب کے ساتھ باہر نہیں آ رہا ہے, جو پیشاب کی نالی ہے اس سے باہر نہیں آ رہا ہے, وہ ایبزارب نہیں ہو رہا ہے, تو اس کی وجہ سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی کیلشیم سٹونز بن سکتے ہیں.
چلتے ہیں دوسرے اقسام کی طرف, آیا آپ نے جس طرح اشارہ کیا کہ مختلف اقسام ہیں, اور بھی اقسام ہیں سٹونز کی؟
جی بالکل, جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ سب سے پہلے جو سب سے کامن تھی وہ کیلشیم سٹونز تھی, تو اس کے بعد آتی ہے یورک ایسڈ سٹونز, جو یورک ایسڈ سے بنتی ہے, اس کا نام یورک ایسڈ ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا پی ایچ انکریز ہوا ہے, پی ایچ انکریز ہوا ہے تو وہ ایسڈ کی طرف جا رہا ہے, ایسڈ جو ہے وہ یورک ایسڈ بننے میں مدد کرتا ہے, یورک ایسڈ سٹونز کو بننے میں مدد کرتا ہے. یورک ایسڈ سٹونز مطلب جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ ہمارے ناظرین نے بھی سنا ہوگا, گاؤٹ پرابلمز ہوتی ہے جس میں یورک ایسڈ انکریز ہوتا ہے, اس میں بھی یورک ایسڈ سٹونز بننے کے خدشات ہوتے ہیں. اسی طریقے سے دوسری ڈائٹری سپلیمنٹس, پوٹاشیم بھی اس کو ہیلپ کرتا ہے اور سوڈیم بھی جیسے کیلشیم سٹونز کے ساتھ ہے, تو ان کو بھی یورک ایسڈ سٹونز بننے میں مطلب ان کو بھی وہ ہیلپ کرتی ہیں, کیونکہ اس میں زیادہ تر پی ایچ کا رول رہتا ہے. جو ہی آپ کا پی ایچ انکریز ہو جائے, جو ہی آپ کی گردوں کا جو یہ پی ایچ ہے وہ ایسیڈک کی طرف چلا جائے تو اس میں یورک ایسڈ سٹونز بننے کے بہت زیادہ خدشات ہوتے ہیں.
سید واجد علی شیرازی صاحب لاہور سے یہاں پر اپنا ایک تجربہ وہ ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب سے اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتا ہوں, میرے گردے میں پتھری تھی اور دوسرے میں ذرات تھے, میں نے خار خشک کے قہوے کا استعمال کیا لگاتار کچھ دنوں تک, تو مجھے یعنی اس کی وجہ سے جو درد ہو رہا تھا اس میں آہستہ آہستہ وہ ختم ہو گیا اور اب وہ بالکل ٹھیک ہے, اللہ کا شکر ہے. اس کے علاوہ یہاں پر سید کامران صاحب, آپ جو ہیں وہ بھی ہمارے لیے ایک سوال بھیجتے, آنے والے حصے میں آپ کا سوال شامل کریں گے. ڈاکٹر صاحب, ہم گفتگو کر رہے تھے گردے میں پتھری کی مختلف اقسام, میں چاہوں گی اس کو آگے بڑھائیں ہم.
جی بالکل, دو قسمیں ہم نے کہی تھی, کیلشیم اور یورک ایسڈ سٹونز, اس کے علاوہ جو ہے اسٹروائڈ سٹونز ان کو بولتے ہیں ہم, ان میں پوٹاشیم اور میگنیشیم پایا جاتا ہے ان سٹونز میں. یہ ایکچولی کسی بیکٹیریل انفیکشنز کی وجہ سے ہوتے ہیں, یا تو بیکٹیریا آپ کے پیشاب کی نالی سے آپ کے گردے تک پہنچ جاتے ہیں, یا تو بلڈ سرکولیشن کی وجہ سے وہ آپ کے گردے تک پہنچ جاتی ہیں.
ٹھیک ہے,
تو انفیکشنز کی وجہ سے یہ سٹونز بنتی ہیں, یہ پتھری بنتی ہے, اور جب یہ پتھری بنتی ہے تو ان کا ایک ان کی ایک علامت یہ ہے کہ یہ پی ایچ آپ کا انکریز کرتی ہیں, یہ ایسیڈک پی ایچ بناتی ہیں بلڈ میں. चौथी किस्म जो है वो उनको हम बोलते हैं सिस्टीन स्टोन्स। सिस्टीन जो है ये एक अमीनो एसिड है। अमीनो एसिड का काम ये होता है कि वो प्रोटीन्स बनाते हैं हमारी जिस्म के अंदर। तो सिस्टीन जो है जब ये डिसफंक्शनल हो जाए या इसकी ज़्यादती हो जाए, मतलब ये इसकी तादाद में ज़्यादा हो या क्वांटिटी में ज़्यादा हो जाए, तो उसकी वजह से भी स्टोन्स बनते हैं जिनको हम सिस्टीन स्टोन्स बोलते हैं।
ठीक है,
ये कुछ मेजर अकसाम हैं स्टोन्स के
जो
उमूमन पाए जाते हैं।
अच्छा, तो डॉक्टर साहब चलते हैं, सब ये सवाल भी हमारे पास आया था, सैयद कामरान हुसैन गुजरावाला पाकिस्तान से भेजते हैं। अलामत क्या है अगर एक शख्स को गुर्दे में पथरी की शिकायत हो?
जी बिल्कुल, सबसे बड़ी अलामत जो है पथरी की पेन, दर्द शुरू होना, और ये दर्द कई मतलब तरीके अपना सकता है।
अच्छा।
कई मतलब तरीकों से ये दर्द शुरू हो सकता है। ये कि अगर पथरी जब हो और अभी तक दर्द नहीं शुरू हुआ हो, और जब दर्द शुरू होता है तो उसका जो ऑनसेट होता है, जब वो दर्द शुरू होने में होता है, वो बड़ा मतलब पेनफुल होता है, बहुत शदीद होता है, आगे जाके ये फिर कम भी हो सकता है। तो सबसे पहले जो पथरी होती है मतलब बाइलेटरली भी हो सकती है, मतलब किसी भी किडनी आपके दाएं साइड वाली किडनी में भी हो सकती है या बाएं में भी। तो जिस तरफ से किडनी में स्टोन होती है, पथरी होती है, उस तरफ से पेन होती है।
ठीक है।
और बैक पेन भी होती है।
सही।
क्योंकि जो अगर हम देखेंगे तो किडनी जो है, जो एनाटॉमिकल अगर इंसान के जिस्म में देखेंगे तो ज्यादातर ये पीछे की तरफ है बनस्पत आगे की तरफ, तो बैक पेन भी होती है।
जी बिल्कुल
जी बिल्कुल, ये वो अक्सर कहते हैं कि वो जैसे वो कोई तीर मार रहा है तो वैसा दर्द महसूस होता है इसमें।
और अच्छा, इसके एक आप बात में से पहले कि हम आगे बढ़े, ये दर्द जो है लगातार रहेगा या शुरू होगा, रुकेगा, फिर चलेगा इस तरह से?
जी बिल्कुल, ये इसमें सबसे एक और अलामत ये है कि फ्लक्चुएटिंग पेन होती है, कभी आती है कभी जाती है, और कभी बड़ी शिद्दत के साथ जाता है और कभी शिद्दत के साथ आता है, तो इसमें बड़ी पेनफुलनेस रहती है। इसके अलावा, इन दो अलामत के अलावा, जब ये एक बंदा है कि उसको मतलब पेशाब करने की जहमत होती है तो उसको ज़्यादा फील होता है कि मैं अक्सर मतलब टॉयलेट चला जाऊं और अक्सर मैं मतलब बैतुल खुला चला जाऊं और मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वो पेशाब करने की वो मतलब थोड़ी बहुत नीड, वो अर्जेंसी जिसको हम बोलते हैं,
उसको महसूस हो रहा होता है कि अभी मुझे लाइक जाना है वॉशरूम, लेकिन दरअसल से ये इसकी हालत नहीं होती।
जी बिल्कुल, ये भी एक अलामतों में से है। इसके साथ साथ जब पेशाब हो तो शायद उसमें आप पीलापन पाए या क्या कहते हैं इसको, रेडनेस जो है, लाल थोड़ा हो आपका जो यूरिन है, जो आपका पेशाब हो, क्योंकि ये भी हो सकता है कि जो स्टोन बनी हुई हो और वो कहीं फंसी हुई हो आपके अंदर, तो वो वहाँ से जो है ब्लड का निकलना शुरू हुआ हो,
जख्म
सा हो जाए, तो वो यूरिन के साथ फिर आप यूरिन की जो कलर है वो चेंज हो सकता है। एक और अलामत ये कि आपका जो यूरिन होता है वो थोड़ा बादली रंग का, मतलब जो बादलों का कलर होता है जिसको बोलते हैं क्लाउडी कलर, वो उस रंग का होता है। और जब आप पेशाब करते हैं तो उसका जो स्मेल होता है, बू होती है, वो बिल्कुल बहुत अजीब सी होती है,
गैर काबिले बर्दाश्त होती है।
जी बिल्कुल, गैर काबिले बर्दाश्त होती है। तो ये कुछ अलामत हैं।
अच्छा, ये भी सुना है डॉक्टर साहब मैंने, माफ कीजिएगा, कि पेशाब का रुक रुक कर आना भी इसकी अलामत हो सकती है।
जी बिल्कुल, अक्सर ये होता है कि अगर स्टोन जो है पेशाब की नाली में कहीं फंस गई हो, वो गुर्दे से निकल के पेशाब की नाली में हो गई हो, उसमें बहुत ज्यादा पेन होती है, क्योंकि जब पेशाब का जो फोर्स होता है, एक तो उसकी वजह से वो उसको फोर्स कर रही है कि आप बाहर चले जाएं, लेकिन वो बाहर नहीं आ रही है, और उसकी वजह से जब पेशाब वो कतरा कतरा इख्तियार सूरत इख्तियार कर लेता है।
तो ये कुछ खास अलाइम है जो हर पेशेंट को दिखी जाती है। अच्छा, चलते हैं इस तरफ के, इससे पहले कि हम इसके इलाज और इस तरफ हम आगे बढ़े, आपने बताया हमारा डाइट का इस पर काफी दारोमदार है और काफी किरदार है। तो ऐसे लोग जिनको मिसाल के तौर पर एक बार पथरी हो गई है, ठीक है, वो चाहे लेफ्ट में हो या राइट में हो, आया अगर उनकी डाइट ठीक ना हो या फिर वो एक सही लाइफस्टाइल नहीं अपना रहे, इनको आगे चलकर फिर से पथरी हो सकती है, अलबत्ता उन्होंने इलाज भी करवा लिया हो तो?
जी बिल्कुल, ये एक तरीके से मैं कहूँगा कि इसके कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं, जिसमें ये भी एक रिस्क फैक्टर है कि फैमिली में, जिनको फैमिली में अगर किसी को स्टोन हो और जो आने वाली जो उसके नस्लें हैं, उनके बच्चे हैं और उनके बच्चे हैं, तो उनमें स्टोन्स बनने के खतरात सबसे ज़्यादा हैं। और ये भी कि जैसे आपने कहा कि अक्सर होता है कि कुछ मतलब पेशेंट्स जो होते हैं या कुछ लोग जो होते हैं, उनमें पथरी बनती है और वो फिर उसका इलाज भी करवाते हैं, लेकिन फिर कुछ टाइम के बाद फिर से उनके गुर्दों में पथरी बनती है। ये भी अक्सर देखने को मिला है और ये भी हो सकता है, क्योंकि इसके कई सारे वजूहात हैं। अगर उनका इलाज उस पत्थर को तोड़ने में हुआ है, तो वो पत्थर टूट के मतलब उसको पेशाब के साथ बाहर आएगा, या चाहे उसको सर्जिकली रिमूव किया हो, लेकिन जो उसका असल जो है अगर उसका इलाज नहीं किया गया हो जिसकी वजह से वो बन रही है तो वो फिर से बनने का खतरा है।
तो एक शख्स को अगर मिसाल के तौर पर कैल्शियम की लाइक वो स्टोन्स की शिकायत रही हो, क्या ऐसा हो सकता है कि उसके कैल्शियम के स्टोन की जगह आने वाले स्टोन जो बन रहे हैं वो यूरिक एसिड के हों या नहीं, उसको उसकी शिकायत रह सकती है?
इससे मैं इससे पहले कि इस सवाल का मैं जवाब दूँ, अक्सर कहते हैं कि जब डॉक्टर्स कहते हैं कि जो ही आप मतलब अगर आपको लगे कि मतलब स्टोन है और वो मतलब बाहर आ रही है पेशाब के साथ कुछ जर्रा जैसे निकल आ रहे हैं, तो उनको आप यूरिन में अपने एक बोतल में कलेक्ट करें और आप लेबोरेटरी एग्जामिनेशन के लिए उनको ले जाएं, ताकि उन जो ये जर्रात है या वो पत्थरी होगी उसको चेक करें कि ये किस किस्म की स्टोन है, तो उसके बिना पे डॉक्टर आपका इलाज करेगा और आपकी फैमिलियर बैकग्राउंड पे भी उसी की वजह पे आपके साथ वो उसी तरीके से आपको प्रिकॉशंस या परहेज करने का या आपको ड्रग्स देगा।
अच्छा डॉक्टर साहब, आपने अपनी गुफ्तगू में इशारा किया कि बराबर यानी हम देखते हैं खवातीन की निस्बत मर्दों में शिकायत ज़्यादा पाई जाती है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इसकी वजह सिगरेट नोशी या फिर मर्दों का लाइफ स्टाइल भी है, आप जिस तरह से आपने भी इशारा किया इसकी तरफ, या नहीं कोई
एक इसकी ये वजह हो सकती है कि और है भाई कि लाइफ स्टाइल जैसे आपने कहा, तो लाइफ स्टाइल में ही डाइटिंग भी एक उसका जुज है, तो इसमें अक्सर जो गजाएँ जो सोडियम और पोटाशियम में रिच होती हैं तो उनको वो ज़्यादा असर रखते हैं कि जो मतलब ज़िंदगी पे या पथरी बनने में जो एक
अमर रहता है
जो बिल्कुल मतलब इसका रोल बहुत रोल रहता है, इम्पोर्टेंट रोल। तो ये भी है कि दूसरे हार्मोनल लेवल्स भी होते हैं और जो जैसे हमने कहा कि एक माहवारा होता है और उसके दौरान बिल्कुल भी मतलब रेयर केसेस में औरतों के अंदर पाया जाता है स्टोन बनना, और फिर जैसे मैंने पहले भी कहा कि जब वो उसको माहवारा का स्टॉप होता है जो वो बंद होता है,
वो साइकिल जब बंद हो जाता है
तो फिर इक्वलिटी आ जाती है बनने में, जितनी मतलब जितनी परसेंटेज मर्दों में बनती है पथरी उतनी परसेंटेज फिर औरतों में भी बनती है, क्योंकि वो हार्मोनल लेवल्स भी कुछ इसमें इफेक्ट रखते हैं।
एक सवाल आया है सैयद वाजिद अली शिराजी साहब लाहौर से भेजते हैं और कहते हैं कि गॉल ब्लैडर में भी मौजूद है, इन्होंने कहा था कि इनके गुर्दे में पथरी है और इन्होंने खार खुश के कहवे का इस्तेमाल किया था तो वो बेहतर हो गए हैं, इसकी शिद्दत भी इस कहवे से लगातार ख़त्म हो गई है, क्या मैं गॉल ब्लैडर की सर्जरी करवाऊँ, या डॉक्टर साहब आपकी राय क्या है इस हवाले से?
देखिए, सबसे पहले गुर्दे में जो पथरी बनती है उसकी वजूहत कुछ और हैं और जो गॉल ब्लैडर में बनते हैं उनके वजूहत कुछ और हैं, क्योंकि गॉल ब्लैडर जो है उसमें बाइल जमा होता है तो उसको उसका उसमें बाइल का इफेक्ट रहता है, और अक्सर देखने को मिलता है कि गॉल ब्लैडर में बाइलियर स्टोन्स मिलते हैं, जो स्टोन्स जो बाइल वहाँ पे जमा हुआ होता है या उसमें कोलेस्ट्रॉल का भी एक उसका भी एक रोल रहता है, तो जो बाइल और कोलेस्ट्रॉल मिला के जो वहाँ पर बाइलियर स्टोन्स बनते हैं तो उनको डिफरेंट अगर काबिल कबूल हो कि उनका इलाज हो ताकि वो पहले ये डॉक्टर के पास जाएं, वो उनको डेफिनेटली मतलब कहेंगे कि आप पहले एक एक्सरे या अल्ट्रासाउंड कराएं, और अल्ट्रासाउंड पे पता चलेगा कि गॉल ब्लैडर में कितने पत्थर है। अक्सर देखने को मिलता है कि गॉल ब्लैडर जो है इतने भी केसेस होते हैं कि पूरा गॉल ब्लैडर भरा हुआ होता है पत्थरों से, फिर उसको रिमूव करना पड़ता है, पूरे उसको गॉल ब्लैडर को ही रिमूव करना पड़ता है ना कि पत्थर को, तो क्योंकि ये बहुत एक अहम गॉल ब्लैडर का रोल होता है, हमारे लिवर के साथ कनेक्शन होता है,
बिल्कुल ऐसा ही।
तो इनको देखना चाहिए, इनको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, अपनी अल्ट्रासाउंड करानी चाहिए
और कंडीशन क्या है,
सोनोग्राफी भी करानी चाहिए और देखनी चाहिए कि मतलब कितने स्टोन्स है, कौन से स्टोन्स है वहाँ पे, यूजुअली बाइलियर स्टोन्स ही होती है, ताकि फिर डॉक्टर अकॉर्डिंगली चाहे वो सर्जिकल प्रोसीजर हो या मेडिकेशन से फिर वो ठीक हो सकता है।
बिल्कुल सही है, बिल्कुल। अच्छा चलते हैं इस तरफ के, मैं पूछना चाह रही थी कि हम किसी खास रिस्क फैक्टर्स की तरफ हम चाहेंगे इशारा करें जो इस बीमारी से इनका लेना देना।
जी बिल्कुल, जैसे मैंने पहले भी उस क्वेश्चन का एक जवाब दिया था कि फैमिलियल एक रिस्क फैक्टर होता है इसमें, जेनेटिक। जी बिल्कुल, अगर आपकी फैमिली में हुआ है किसी को तो आपको भी खतरा रहता है कि आपको भी पथरी बन जाए। इसके अलावा वो लोग जो पानी बहुत कम पीते हैं उनको भी खतरा होता है कि वो स्टोन्स मतलब उनके गुर्दे में पथरी बन जाए। और ये कि जो अपनी डाइट में सोडियम और पोटाशियम ज़्यादा लेते हैं, जिनकी डाइट में सोडियम और पोटाशियम ज़्यादा होता है, तो जैसे मैंने पहले ही कहा कि जो कैल्शियम है सोडियम और पोटाशियम के साथ ही काम करता है अक्सर,
सही।
तो वो क्या करते हैं कि ये डाइट जो ज़्यादातर मतलब इन डाइट का जो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उनमें भी रिस्क बनती है कि उनमें भी पथरी बन सकती हैं। तो ये कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जिनको मतलब सबसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। सबसे ज़्यादा है कि फ्लूड इनटेक, अगर आपका फ्लूड इनटेक बहुत लो हो और आपको मतलब डिहाइड्रेशन का शिकार हो, आपकी स्वेटिंग हो रही हो, आप गर्म किसी जगह रह रहे हो, ऊपर से आप कम पानी ले रहे हैं और वो डिहाइड्रेट भी हो रहा है जल्दी से, तो आपके गुर्दों में जो फिल्ट्रेशन की कैपेसिटी है वो डिक्रीज हो रही है और वहाँ पे जो है वो मतलब क्रिस्टलाइजेशन हो रही है, तो उसकी वजह से भी पथरी बनने के बहुत खदशात होते हैं।
अच्छा चलते हैं, इसमें एज फैक्टर का कितना इसमें है, अगर आप किसी खास जो है वो एज लेवल से आगे बढ़ गए तो आपको खदशा हो सकता है या नहीं, किसी भी एज में आप देखते हैं कि आपको इसकी शिकायत रह सकती है?
नॉर्मली इसमें ज़्यादा एज फैक्टर का कोई रोल नहीं रहता है, लेकिन यूजुअली जो टीन एज होती हैं, जो एडल्टहुड शुरू होती है, वो लेकर अराउंड 50 ईयर्स तक इनमें ज्यादातर बिल्कुल मतलब रिस्क होती है,
रिस्क
इनमें पाई जाए।
नौजवानी से लेकर 50 साल की उम्र तक इसका खर्चा ज्यादा रहता है। डॉक्टर साहब, इलाज के दो हम रवैये अभी देखते हैं, दो तरीके देखते हैं, माफ कीजिएगा रवैये में क्या गई, एक तो ये है कि आप जो है इसमें सर्जरी के जरिए पत्थर को निकालने की कोशिश करते हैं, और दूसरा जो है एंडोस्कोपी के जरिए, या फिर आप देखते हैं कि अब तो लेजर ट्रीटमेंट भी आ गया मेरे ख्याल से, तो कंडीशन के बिना पर डॉक्टर तय करता है कि ठीक है अब लेजर करना चाहिए, सर्जरी करना, किस तरह से?
जी बिल्कुल, ये पत्थर के जो है ये पत्थर के साइज पे भी डिपेंड करता है और पथरी के लोकेशन पे भी डिपेंड करता है कि आपको ट्रीट कैसे किया जाए।
ठीक है,
अगर गुर्दे के अंदर हो तो और उसका डायमीटर 1 सेंटीमीटर अराउंड हो, 1 सेंटीमीटर या उससे भी कम हो, तो यूजुअली उसको मेडिकेशंस के जरिए से ठीक किया जा सकता है।
अच्छा,
और अगर वो कहीं ऐसी जगह फॉर एग्जांपल अब वो उस पेशाब की नाली में फंस गई हो तो उसको डेफिनेटली पेनफुल होती है, या तो उसको एनसेड्स को हम एस्टामिनोफेन देते हैं पेन को रोकने के लिए, पेन किलर्स, या फिर नार्कोटिक्स जैसे मॉर्फिन देते हैं पेन को कम करने के लिए, लेकिन अगर यूरिनरी ओबस्ट्रक्शन ज़्यादा हुई हो तो उसको फिर सर्जिकली रिमूव करना पड़ेगा। सर्जिकल प्रोसीजर्स में हमारे पास दो है, एक को हम बोलते हैं लिथोटॉमी, वो ये होती है कि शॉक वेव्स जो होते हैं वो डालते हैं उसी लोकेशन पे जहाँ पे पथरी होती है, तो फिर वो क्या करते हैं पत्थर को क्रश करते हैं ताकि वो आपके पेशाब के साथ बाहर निकल आए, खारिज हो जाए। और दूसरा एक और प्रोसीजर होता है, ये लिथोटॉमी उसमें की जाती है अगर आपके गुर्दे के अंदर 2 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर का पत्थर पाया जाए, चाहे वो गुर्दे के ऊपरी हिस्से में हो या गुर्दे के निचले वाले हिस्से में हो। और इसके अलावा दूसरा है, हम उसको बोलते हैं नेफ्रोलिथोटॉमी। तो नेफ्रोलिथोटॉमी ये होता है कि उसमें क्या होता है, आपको सर्जिकल प्रोसीजर किया जाता है, आपके बैग से एक इंस्ट्रूमेंट डालते हैं और उस पत्थर तक ले जाते हैं और उसको वो पत्थर को क्रश करता है वहाँ पे, या आजकल ऐसे मतलब इंस्ट्रूमेंट्स आए हैं यही प्रोसीजर होता है, तो वो पत्थर को जो ही वो क्रश करता है वहाँ पे तो उसको वैक्यूमेटेड अंदर की तरफ खींच लेता है अपनी तरफ। तो ये दो प्रोसीजर्स जो सर्जिकल प्रोसीजर्स होते हैं अक्सर मतलब यही यूज करते हैं, लेकिन इसके अलावा जैसे आपने कहा कि ट्रीटमेंट्स मेडिकेशंस तो वो भी यूज हो सकते हैं, जैसे मैंने पहले ही कहा कि पत्थर की साइज पे डिपेंड करता है और पत्थरी के लोकेशन पे डिपेंड करता है
किस तरह से। डॉक्टर साहब, तकरीबन 1.5 मिनट का वक्त है, अब सर्जरी करवा ली जो उनसे तरीके से भी आपने यहाँ पर इशारा किया उस हवाले से, अब उसके बाद क्या करें, किस तरह से जो है वो ख्याल रखा जाए, आया पेन है नहीं है, किस तरह से?
सर, सबसे ज़्यादा जो आप करें सोडियम और पोटाशियम के जो जिसमें सोडियम और पोटाशियम ज़्यादा पाया जाए उन खाने को कम किया जाए, फ्लूड इनटेक बहुत इंक्रीज करें, एटलीस्ट 1 लीटर मतलब जो है पानी आप पिया करें हर दिन,
1 लीटर
पानी, तो ताकि आपकी जो फिल्ट्रेशन रेट है जो किडनीज है वो काम करती रहें और जो एक्सक्रीशन है वो भी काम करता रहे, और दूसरे अपनी जो फैमिली का ख्याल मतलब फैमिली उसका भी ख्याल रखें ताकि आपकी फैमिली में ना कहीं पे हुआ हो, डायबिटीज़ के मरीज़ भी ख्याल रखें, उनमें भी खदशा होता है कि स्टोन बनने का, और जिनमें कोलेस्ट्रॉल होता है उनमें भी अक्सर मतलब ये रिस्क रहता है कि उनमें भी स्टोन्स पाई जाए।
तो सर्जरी के बाद किसी खास किस्म की मेडिकेशन के साथ इन पेशेंट्स को रहना चाहिए या नहीं, डॉक्टर रेकमेंड करते हैं कि सिर्फ लाइफस्टाइल और डाइट का ख्याल रखा जाए तो आपका मसला
जी बिल्कुल, जब तक पथरी हो अगर वो मतलब मेडिकेशन के साथ ही ठीक हो जाए फिर उसके बाद मेडिकेशन तो बंद करते हैं, लेकिन दूसरी दूसरी चीज़ों का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। जैसे मैंने पहले कहा, फ्लूड इनटेक सबसे अहमियत रखता है इसमें। जितना भी आप फ्लूड ज़्यादा पिएंगे तो मे भी आपको मेडिकेशन की या सर्जिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत ही ना पड़े, वो खुद ब खुद आपके जो है पेशाब के साथ बाहर आ जाए।
बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर उवैस सिद्दीक, आप तशरीफ लाए यहाँ पर, ज़बरदस्त गुफ्तगू रही, अहम मालूमात आपने हमें फरहाम की। उम्मीद करती हूँ नाज़रीन को आज की गुफ्तगू ज़रूर पसंद आई होगी।